خداوند کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج کی شام جمعرات کی شام ہم کس لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں؟ اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے سیکھ سکیں.
تھوڑی سی کو کم کر دیں.
تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے سیکھ سکیں. تو آج کی شام یروشلم میں کیا ہوا؟ کسی کو یاد ہے؟ صبح میں نے بتایا تھا. جی بہن، آج کی شام وہ شام ہے جس نے خدا کے ان وعدوں کو، نبیوں کی ان نبوتوں کو، نبیوں کا وہ کلام جو خدا نے کیا، ایک سو نہیں، دو سو نہیں، تین سو نہیں، سو سے تین سو پینسٹھ سے زیادہ نبوتیں ہیں جو اس وقت تک پوری ہوئی ہیں، جو آج سے 2000 سال پہلے جمعرات کے دن ٹھیک یروشلم میں واقعہ میں آئی. تو کس کس کو یاد ہے کہ آج کی شام یروشلم میں کیا ہو رہا تھا؟ چلے میرے ساتھ تھوڑا سا سیکھیں. اتوار کو یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتا ہے، جسے شہانہ داخلہ کہتے ہیں، جسے ہم کھجوری اتوار کہتے ہیں. اور یہ اتوار کو ہوا. سوموار کو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ سوموار کو یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کی، کوڑا بنا کر کیا کیا جی؟ استعمال کیا. منگل کو کیا ہوا؟ منگل کو یسوع مسیح نے جب بکیوں، فریسیوں اور بزرگوں کے سامنے کھڑا ہے تو اس کے اختیار پر کیا کیجیے؟ انگلی اٹھائی گئی کہ یہ جو کام تو کرتا ہے کس اختیار سے کرتا ہے. کس اختیار سے کرتا ہے؟ یہ منگل کے دن ہوا. بدھ کے دن کیا ہوا؟ بدھ کے دن یہودا اسکریوتی نے، سب میری طرف دیکھیں، سب بچے بڑے، بدھ کے دن یہودا اسکریوتی نے یسوع مسیح کو 30 سکوں میں بزرگوں کے ہاتھ میں بیچ دیا اور وہ مقبر بن گیا. کہ یسوع کی مقبری کرے گا کہ جو یسوع ہے میں تم کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں پر ہوگا اور اسے کب پکڑنا ہے. تو یہ بدھ کی شام ہوا. اور آج ہے جمعرات. جمعرات کی شام عید فصح کی تیاری کی جا رہی تھی اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کیا کرتا ہے کہ میرے لیے کیا کیا جائے جی؟ فصح تیار کیا جائے. اور یسوع مسیح کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ تیرا فصح کہاں پر تیار کیا جائے؟ یسوع مسیح ان کو کہتا ہے کہ تم شہر میں جانا، وہاں پر تم کو ایک آدمی ملے گا، اس آدمی کے پیچھے جانا جو گھڑے اٹھائے گڑا اٹھائے ہوئے جا رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ جس جگہ پر وہ جائے چلے جانا اور جا کر کہنا کہ استاد نے کہا ہے کہ تم آج کیا کر ہمارے لیے بسا تیار کر. اور وہ بتا ٹھیک جیسے یسوع نے کہا ویسے ہی شاگرد جا کر کہتے ہیں. اور اس جگہ پر کیا ہوتا ہے جی؟ آخری فصح کا انتظام ہوتا ہے. اور اس جگہ کو کیا کہا گیا جی؟ بالا خانہ. بالا خانہ یعنی کہ وہ جگہ جو یسوع مسیح نے مقرر کی، اس جگہ پر آخری شام کا کھانا کھایا جائے. اور جمعرات کو کیا ہوا ہے؟ یہودا اسکریوتی اور یسوع مسیح کے 11 شاگرد اس آخری فصح کو کھانے کو بیٹھتے ہیں. اور یہ فصح یہودیت میں کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ کہ یہودیوں نے 400 سال فرعون کی غلامی میں مصر میں گزارے تھے اور ان کو خدا نے حکم دیا تھا کہ تم کیا کرنا، تم اس شام کیا کرنا؟ روٹی کھانا. اور وہ روٹی کون سی ہوگی؟ بے خمیری روٹی ہو، اس میں خمیر نہ ہو. कभी किस बात को जाहिर करता है? गुनाह को। तो खुदा ने हुक्म किया कि जब तुम रोटी तैयार करना तो वो रोटी क्या होगी? बेखमीरी हो, जिसमें कोई खमीर ना हो, क्योंकि वो रोटी किसकी तरफ इशारा था? यीशु मसीह की तरफ। उसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमेशा की जिंदगी पाएगा। और यीशु मसीह ने अपनी तरफ इशारा किया कि मैं हूं वो बेखमीरी रोटी। दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए हैं आदम से लेकर अब तक, सब गुनाह की हालत में पैदा हुए सवाए एक के, और वो कौन है? यीशु और मसीह, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और खुदा की कुदरत से, रूह कुदरत की रहनुमाई से पैदा हुआ। और हम सब जानते हैं कि उसकी पैदाइश मौजदाना पैदाइश थी, इसीलिए खुदा ने कहा था कि बेखमीरी रोटी लेना। और वो बेखमीरी रोटी किसकी तरफ इशारा है जी? यीशु मसीह की तरफ, कि उसमें कोई गुनाह पाया नहीं जाता था। तो ये बात थी हुक्म के तौर पर। फिर उनको हुक्म दिया गया था कि तुमने बर्रे को कुर्बान करना है, और बर्रे की कुर्बानी जब करनी है तो हर एक खानदान का फर्द उस बर्रे की कुर्बानी को खाए, और क्या करना है? उस बर्रे के खून को अपने मकानों के दरवाजों की चौखटों पर लगाना है, ताकि जब मौत का फरिश्ता मुख्य मिस्र में से गुजरे तो तुम्हारे खानदान का कोई भी बच्चा ना मरे, क्योंकि खुदा ने फिरौन से कहा था कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो ये आफत आएगी तमाम उन लोगों पर जो मिस्र के रहने वाले थे, के तमाम मिस्रियों के पलौठे मार जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। तो शाम बड़े की कुर्बानी की जाती थी याद करने के लिए कि 400 साल तक खुदा के लोगों ने क्या कुछ किया, क्या क्या उन्होंने दुख सहे। तो आज खुदा का बंदा उनके दरमियान बैठा हुआ है कि क्या हो जी, जुमे रात की शाम वो आखिरी बसा, ये आखिरी खाना उनके साथ खाए, क्योंकि एक दिन आने वाला है कि हम सब की जो ख्वाहिश है कि हम यीशु जी के साथ रफाकत करें, रोटी तोड़ें, उसके साथ रफाकत खाने की करें, जैसे आज हम आज शाम करेंगे यीशु को याद करते हुए। और उसने कहा कि फिर वो जलाली हालत में दोबारा जब आसमान की बादशाही में को नया बनाएगा, नया यरूशलेम उतरेगा, तो हम सब जो उस पर ईमान रखते हैं, चाहे वो कोई भी कबीला, कोई भी कौम, कोई भी जुबान बोलने वाली या बोलने वाला हो, वो क्या करेगा? यीशु के साथ रफाकत करेगा। तो बुध की शाम क्या हुआ मेरे साथ, जुमेरात की शाम क्या हुआ मेरे साथ? निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 13 बार, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 13, व्हाट हैपेंड इन दैट डे, थर्सडे नाइट। जब यूहन्ना की इंजील उसका 14 बार देखते हैं तो 13 बार देखते हैं तो पहली बार क्या हुई है यहां पर? आखिरी फसा के लिए तैयारी की जा रही है। तो आज जुमेरात की शाम क्या हुआ है? पहली बात, यीशु मसीह बाला खाना में है, जहां पर यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के पांव धोए। उनके लिए एक नमूना दिया, मैं आपके लिए ये आयात को पढ़ूंगा। ये पहली 17-20 आयात है, लेकिन मैं इनको छोटा छोटा करके पढ़ूंगा ताकि सबको समझ आए। यूहन्ना की इंजील 13 बाब उसकी पहली दो आयात को, पहली एक आयत को देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है। ईदे पता से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। यीशु मसीह जिस्म में खुदा था वो जानता था इससे पहले कुछ हो तो यीशु मसीह को पता था कि क्या होने वाला है। वो वक्त आ चुका है कि जिस काम के लिए यीशु मसीह जमीन पर पैदा हुआ है उसे पूरा करे। तो यहां पर पहली आयत में क्या है, यीशु मसीह अपने बाप के पास जाना है क्योंकि वो बाप से निकला है और फिर बाप के पास ही जाता है। पहली आयत में जो लफ्ज हमें सीखने की जरूरत है वो है मोहब्बत। क्या है जी? कौन कौन मोहब्बत को समझता है जी? किस किस के साथ मोहब्बत की जाती है? आपके एमबीए को आपसे मोहब्बत करते हैं? आपके बहन भाई आपसे मोहब्बत करते हैं? आपके रिश्तेदार आपसे मोहब्बत करते हैं? आप अपने माँ बाप के हिसाब मोहब्बत करते हैं? तो इससे मुराद है कि आप मोहब्बत को समझते हैं। तो यहां पर जो मोहब्बत यीशु मसीह ने की है ये हमारी मोहब्बत जैसी मोहब्बत नहीं है। हमारी दुनियावी मोहब्बत कैसी है? वो है शर्त की बुनियाद पर कि उसकी कोई ना कोई शर्त होती है। अगर कोई मेरे साथ मोहब्बत करेगा तो मैं उसके साथ मोहब्बत करूंगी या करूंगा, चाहे वो रिश्ता बेटे का हो, माँ का हो, बीवी का हो, बच्चे का हो, नौकर का हो, उस्ताद का हो या किसी पड़ोसी का रिश्ता हो। हम मोहब्बत करते हैं शर्त या मोहब्बत, लेकिन यीशु मसीह की कौन सी मोहब्बत है जी? ऐसी मोहब्बत है, इसे मेरे पास भेज दे, खड़ा हो। किसी की आवाज ना आए। कैसी मोहब्बत है जी? शर्त या मोहब्बत कि अगर मेरा कोई काम करेगा, अगर मेरे साथ कोई इच्छा पेश आएगा तो मैं उसके साथ अच्छा इच्छा पेश आऊंगी आऊंगा। यह है दुनियावी मोहब्बत। यहां पर जो मोहब्बत यीशु मसीह कर रहा है, बावजूद जानते हुए कि उनको उनमें से एक यीशु को पकड़वाएगा वो कौन है? यहूदा अस्कर युकी। एक पत्रस जो उसका आगे जाकर कुछ ही घंटे बाद क्या करेगा? तीन दफा इनकार करेगा और बाकी जो 10-9 शिगिर्द बचेंगे वो यीशु को छोड़कर जैसे भेड़िए को देखकर भेड़े भाग जाती है क्या करेगी? यीशु को छोड़कर वो क्या हो जाएंगे जी? तितर बितर हो जाएंगे गंदमनी बाग में। आज ही की रात वो क्या करेंगे? सब के सब एक पकड़वाएगा, बाकी एक इनकार करेगा और कुछ उसे छोड़कर तितर बितर हो जाएंगे। यीशु ये सब जानता था लेकिन उसे क्या की? मोहब्बत की। हमसे भी वो ऐसे ही मोहब्बत करता है। वो जानता है हम उसका इनकार करेंगे, वो जानता है कि हम उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, वो जानता है कि हम पूरे दिल से उसके साथ नहीं चलेंगे, वो जानता है कि हम उससे ऐसी मोहब्बत रखते हैं कि अगर हमारी दुआ का जवाब दे दे तो हम कहते हैं जय यीशु की, हर जय यीशु की, और जब जवाब नहीं मिलता तो कहते पता नहीं की हो रहा साड़ी दुआ का जवाब नहीं मिलता, साड़ी सुनता ही नहीं। और बहुत दफा हमारी मोहब्बत बहुत से कड़वे लफ्जों में जाहिर होती है, वो हमारे दिलों के हाल जानता है कि हम कैसी उसकी प्रस्तुत करते हैं, कितना ज्यादा उसके हुक्मों को मानते हैं, कितने ज्यादा वफादार मसीही कहलाते हैं। यीशु जानता है, खुदा जानता है, बावजूद हमारी गलतियों, कामयाबियों, हमारे झूठों, हमारे फरेबों, हर चीज को जानने के बावजूद वो क्या करता है? हमसे मोहब्बत करता है। ये है मसीह की मोहब्बत। दुनिया में आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर चले जाएं, आपको मसीह जैसी मोहब्बत नहीं मिलेगी। और यहां तक कहूंगा यशायाह नबी कहता है कि खुदा ने कहा कि मां अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुमको कभी भी नहीं भूलूंगा। क्यों? दाऊद कहता है जबूर नवीस में कहता है कि अगर मेरे मां बाप तुझे छोड़ने को तो खुदा कहता है कि मैं तुमको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। एक और वाक्य है बाइबल मुकद्दस में कि औरतों ने अपने बच्चों की बलि दी शैतान के सामने झुककर, तो बहुत अब हम कहते हैं कि मां का प्यार भी फीका पड़ जाता है खुदा की मोहब्बत के सामने। तो यीशु की जैसी मोहब्बत ना कभी किसी ने की है, ना ही कोई पैदा हुआ है कि कर सके, और ना ही कभी करेगा। और इसीलिए खुदा ने हम सबसे ये हुक्म के तौर पर कहा है कि अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो इससे लोग जानेंगे कि हम किसके शिगिर्द हैं, जी यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह जैसी मोहब्बत कौन कौन करना चाहता है? करना चाहते हैं? बड़ी महंगी है, कुर्बानी देनी पड़ती है, फरमाबरदारी करनी पड़ती है, पीछे चलना होगा, अपनी खुदी का इनकार करना होगा। फोन के रख रात करेगा यीशु की जैसी मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत। मैनू सालन दिता तो तेन सालन दांगी, मैनू सूर लैके दिता तो तेन सूर लैके दांगी। इतने आगे भेजे आ गया, शैतान क्या करता है? आबादों को खराब करता है, बातों को क्या करता है जी? खराब। ये मसीह वाली मोहब्बत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उससे जो तकाजा किया गया है कि फरमा बरदारी करो, लेकिन नहीं, फरमा बरदारी ना करने के बावजूद क्या है जी? नाफरमानी का सबूत। अगर शैतान पत्रस को गलत मशवरा दे सकता है, अगर शैतान यहूदा को गलत मशवरा दे सकता है, तो हमको भी वो गुमराह कर सकता है हमारी इबादत को खराब करने के लिए। तो मोहब्बत, मसीह जैसी मोहब्बत, मसीह जैसी मोहब्बत बड़ी औखी है। कब होगी? जब हम मसीह के साथ जुड़ेंगे। तो यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से मोहब्बत की कि एक मुझे पकड़वाएगा, एक मेरा इनकार करेगा और बाकी छोड़कर भाग जाएंगे। आगे क्या हुआ जी? और जब अबलीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका कि उसे पकड़े, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान लिया, यीशु जानता था कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा, इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शिगिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछना शुरू किए। यीशु भी यहां पर उनको नमूना दे रहा है कि क्या करना है, एक दूसरे को क्या करना है जी? माफ करना है। एक दूसरे को माफ करना है ताकि क्या हो जी? हम सीख सकें। यहां पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनी है, और आगे क्या हुआ? उसने उनके पांव धोने शुरू किए, और जब पांव धो रहा था यीशु मसीह, तो छठी आयत में लिखा है वो शमौन पत्रस तक पहुंचा, उसने कहा ऐ खुदावंद क्या तू मेरे पांव धोएगा? ये वो रवैया है जिसमें बहुत दफा हम खुदावंद से कहते हैं कि क्या तू मुझे माफ करेगा, मुझे तेरी माफी की जरूरत नहीं, मैं तेरी माफी नहीं चाहता। जब हम गुनाह करते हैं या गलती करते हैं ना, हमारा मुंह काहे जैसा इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, और हम बहुत दफा खासदारी नहीं करते, गलती को नहीं मानते। क्यों ये सुशील के पौध हो रहा है? क्योंकि शिगिर्दों में क्या कर रही थी? बहस चल रही थी कि बड़ा कौन है, अच्छा कौन है, بہتر کون ہے، عمدہ کون ہے؟ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ان میں آپس میں بحث جا رہی ہے جیسے بہت دفعہ کتنے کپڑے سونے، کنیاں جتیاں نہیں، ساری تنخواہ زیادہ، ساڑھے گھٹ کپڑے، میرا تیرنا وہ مہنگا، میں تیرنا وہ زیادہ پرستش اچھی کر دی، میں تیرنا وہ زیادہ اچھی پرستش کر دا، میری بہن بھی چڑھ جاتی تیری نہیں آتی، ساڑھے دو آدھے ساڑھے تین آدھے، بہت سی باتوں پر بحث کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے، شاگرد بھی ایسے کر رہے تھے کہ یہ تم سیدھے کھبے ہاتھ کون بیٹھے گا، سچے ہاتھ کون بیٹھے گا، تو یہ ساری بات چل رہی ہے. تو جمعرات کی شام کیا ہوا، یسوع سیدھے پاؤں دھوئے، پاؤں دھوئے ہیں، اور پاؤں دھونے کا مقصد کیا تھا، ان کو سکھانا کہ میں تمہارے روزانہ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں. آگے دیکھے کیا ہوا، ساتویں آیت میں لکھا، یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. پترس نے اس سے کہا تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھو پائے گا. بڑا تیز ہے پترس، گل کرن تو پہلے سوچنا، بات جو ہے خدا کا بڑا ہی پیارا شگرد. ساڈے بھی بہت سے ایسے ہیں، یسوع سی نوا گرجا بنایا سی، خدا شاید آؤں گے، اس بعد ہے نو مہینے ہو گئے چیتا ہی نہیں. یسوع جی ابھی تیرے یاد کر گے جی پترس، یسوع میں تیری مرن لی بھی تیار ہوں. اچھا ہوں چار کے گھنٹے بعد چھوٹی جی کڑی نے کہا یہ بھی ان کے ساتھ تھا، نہیں میں تیرو جانتا ہی نہیں جانا، چھوٹی جی کڑی تو ڈر کے یسوع کا انکار کر دیا. تو بائبل مقدس کہندی ہے منہ کھولن دے جلدی نہ کریے. پترس سانو بڑا ہی پیارا تے شرمیلا تے دلیر نظر آتا وا، ہر گل دے وچ بھج کے اگے. کسی ویلے مینوں یہ رجیش یاد آئے گا، پترس دی کہانی پڑھتا ہوں، ہر کام چ اگے، میں آ بھی کرنا او بھی کرنا. بہت سے نوجوان نظر آتے ہیں، پترس سانو یسوع تو میرے قریب بیٹھ تو ہی نہیں سکتا، یسوع کی کہندا، یسوع نے اس سے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شراکت نہیں. اگر سارے جی گناہ ہوئے تو کیا اسی خدا دے نال ملاب کر سکتے؟ اگر چوٹ دیر سے ہوئے تو کیا ساری دعا سنی جائے گی؟ کیا فریب ہوئے تو ساری دعا دے حضور مقبول ٹھہرے گی؟ نہیں. پتر سراسر یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں مینو ضرورت نہیں کہ تو مینو دھو کے پاک سے صاف کرے. پتر سو یسوع نے کیا، اگر میں تین دھو کے پاک نہ صاف کیتا تو کہڑے مرضی دھو بھگو کے دارا مرضی طرف سے صاف، دوسرے لفظ لہرا تینو دھو کے کوئی ہور شہ پاک صاف کر نہیں سکتی. کی ہوا کہ جدو پترس کے کھانے چ بیٹھی انہوں سمجھ آئی، بہت دفعہ جی سانو سمجھ آتی کہ اسی بہت دفعہ کہتے خدا کسی تیری آ کر گیا کرا گیا جدو سارے دین چ آتی کہ اوے اسی دراصل کہہ کی رہے ہیں، تو پھر ابھی کہنے یسوع جو تو کہے گا وہی کران گے. اگے کی لکھا جی نویں آئے کی شمان پترس نے اسے کہا ہے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. یسوع کہتا میں تیرے پاؤں تو نہ جا رہا ہوں، کہنا نہیں میں مینو سر تو لے کے پاؤں تک دھو دے. ہوں مجھے سمجھ آ گئی کہ تیرے دھوتے ہیں بغیر میری رفاقت تے شراکت نہیں. اسی طرح اگر اسی اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے تو ساری خدا دے نال رفاقت شراکت نہیں ہوئے گی. سنیا سنایا پڑھیا لکھایا سارا کچھ شیطان کی کر دے گا، ضائع کر دے گا. اسی اس زمین کی طرح ہو جائیں گے جیڑی زمین کیا پتھریلی، بیج بویا تھوڑیاں جی جڑا پڑیاں تے پودا ابھر پیا تے جدوں اپنا کہتے کہ جڑ نہ ہوئی تے ساری مسیحی زندگی بھی اس طرح کی ہو جائے گی جی اسی اپنی زندگی کے گناہ واسطے توبہ नहीं करते। आगे क्या हुआ जी, यीशु फे कहता पतरस फे काली करता पिया की करता पे पतरस, पहले कहता मैं जाने नहीं के तो में, ते दूसरे हाथ यीशु ने कहा के पतरस जे तू मेरी गल ना मने ते तेरी मेरी कोई रफाकत ते शराकत नहीं होता सी। ते पतरस की कहता सिर तो लैके पौन तक की धो दे, फिर जल्दी करता पे। यीशु जी ने क्या कहा दसवीं आए, यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजिर नहीं बल्कि सरासर पाप हो। यीशु फिर कह रहे कि पतरस तू मेरे से ईमान ले आ चुके हैं, तू निजात को पा चुके हैं, इस करके निजात पाने के बाद तेनू दोबारा दोबारा गोते लैन की जरूरत नहीं, तेनू दोबारा दोबारा और अमल करने की जरूरत नहीं, करना की है तेनू सिर्फ एक काम हो गया हर रोज मेरे को आना ताकि मैं तेन धो के पाप से साफ करा। अभी भी अज की शाम अपने अपने दिलों जांचिए, अपने अपने दिलों पहचानिए कि साढ़े जिंदगी के कोई गंदगी से नहीं, कोई गुनाह, कोई हसद, कोई तकबर, कोई झूठ, कोई मलामत, किसी की ऐब जोई नहीं की, जब करी जाने हैं तो कहने ठीक आ इनू ही करके रखो तो भी करते रहो खैर आ, जिसे भी जावे चुगलिया भी करवागे, हदत भी रखांगे, फुगत भी रखांगे, कुछ नहीं कहना किसी पता लगना। यीशु जानता है हम सब को, तो आज की शाम बड़े काम हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसकी पूरी तफसील के क्या क्या हुआ है तो आज की शाम आप पढ़ सकते हैं 13वें बाब से लेकर यूहन्ना 13 बाब से लेकर 17 बाब तक। ये सारा सारा का सारा कलाम कहां पर हुआ है जी, बालाखाना में। यीशु मसीह वहां पर बैठा है और जब आप मत्ती की झील को देखते हैं तो मत्ती की झील में सारा का सारा हिस्सा हमको मिलता है कि क्या हुआ। मत्ती की झील 26वें बाब से आप 27वें बाब तक पढ़ेंगे तो आप सबको पता चलेगा यीशु मसीह ने आखिरी फसा खाया, यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के पांव धोए, यीशु मसीह पिलातुस के पास गया, यीशु मसीह सरदार काहिन कायफा के पास हाजिर किया गया। यीशु मसीह की आज रात कितनी पेशियां हुई हैं जी, 6, कितनी जी 5 से 6 अदालतों में से सारी रात लेकर जाते हैं, झूठे अल्लाह लगाते हैं, उसके भूखे मारते हैं, उसके तमाचे मारते हैं, उसकी दाढ़ी को नोचते हैं, उसके मुंह पर थूकते हैं और गस्तानी बाग में आज ही की शाम यहूदा से भूसा लेकर पकड़वाता है और यीशु मसीह कहता है ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जुमेरात भी शाम को पतरस छुरी निकालता है और हैकल के बहुत से प्यादों में से एक का कान उड़ा देता है और यीशु उठाकर उस कान को फिर लगा देता है। आज की शाम सारी रात क्या हुई है जी, यीशु की पेशियां झूठी गवाही पेश की गई है क्योंकि आज की शाम इसराइल में बड़ी मसरूफ शाम थी, लाखों से नहीं कह सकते हैं कि करोड़ों के हिसाब से लोग वहां पर जाकर क्या करते थे, कुर्बानी और ये सफलता की ईद में शामिल होते थे। उस वक्त की अभी तक मैंने नहीं पढ़ी कि कितनी तादाद थी, लेकिन जब मैं वहां पर गया तो वहां पर एक साल में अब 18 मिलियन लोग एक साल में जाते हैं यरूशलेम के उन तमाम दूसरे प्रोग्रामों में शामिल होने के लिए। 18 मिलियन, 1 मिलियन में कितने लोग, कितने लाख होते हैं जी, 10 लाख। 10 को जरा तकदीर दे रहे 18 के साल कितने लोग एक साल में जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, यीशु ने जैसे अपने शिगिर्दों के साथ रोटी खाई और वो प्याला लिया और उनको हुक्म दिया कि मेरी यादगारी में ये किया करना। इस साल हमने ये नया शुरू किया है, मैं चाहता हूं कि आने वाले सालों में ईमानदारी से बताना है कि आप कभी इतने सालों से आप चर्च जा रहे हैं पहले कभी किसी ने बताया कि इतवार के बाद सोमवार को क्या हुआ, मंगल को क्या हुआ, बुध को क्या हुआ, जुमेरात को क्या हुआ, जुमे को क्या हुआ, बताया कभी किसी ने? मैं चाहता हूँ कि आप पुराने बाइबल पर क्या कहती हैं, और हम हफ्ते के दिन देखेंगे कि हफ्ते के दिन क्या हुआ। हफ्ता दो दिन था जिसमें मुसम्मत खुबोशी थी। कोई और माइक है? हफ्ता मुकम्मल खामोशी का दिन था जिसमें कुछ नहीं था। मुकम्मल खामोशी थी, कोई काम काज नहीं किया जा रहा था। और एतवार का दिन वो दिन था जिसे हम बनाएंगे। और फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ आपको सिखाना, एतवार के बाद क्या हुआ। यीशु मसीह ने 50 के 50 दिन ईदे पेंटिकोस्ट के दिन से पहले कहां पर गुजारे? आसमान पर उठाए जाने से। कभी इस पर सीखा किसी ने? नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सीखो ताकि आपको पता हो कि 7 दिनों में क्या हुआ, 7 के बाद 50वें दिन क्या हुआ, और कहां कहां पर यीशु मसीह आकर लोगों से कहता है। तो आए हम खुदा से जुड़ चुके हैं, अपने दिलों को देखें। अगर हमारे पांव गंदे हैं, यानी कि अगर हम में गुनाह भक्ति है, तो उसके पास आए ताकि वो हमें धोकर पाक और साफ करे। मुकम्मल खामोशी क्या करेंगे? सब आंखें बंद हो। सब आंखें बंद होंगे। हम दुआ करेंगे इस रोटी के लिए और इस शीरे के लिए, और खुदावंत से उसकी बरकत चाहेंगे कि खुदावंत हम सब को, हम सब अपने दिलों को जानते, अगर हमारी जिंदगी में कोई गुनाह और खता है, कोई पुरानी बात जो हमने अपने जहन में रखी हुई है कि कोई और नहीं जानता, तो मौका है कि खुदा से कहेंगे हमें धोकर पाक और साफ कर। कोई आदत है जो आपको परेशान कर रही है आपकी उसी ही जिंदगी में, उन आदतों को यीशु को दे दे ताकि वो आपको धोकर पाक और साफ करे। हम दुआ करेंगे। खुदावन खुदा तेरे हजूर आता हूँ आज, खुदावन हम सबको धोकर पाक और साफ कर, ताकि पत्रस की तरह ये ना कहने वाले बने कि तू हमारे पांव कभी भी हमें नहीं पाएगा। बाप यीशु मसीह के नाम में तू हमारे दिलों से वाकिफ है, हर तरह की नापाकी को, आपकी को, हर तरह की कमजोरियों को तू दूर कर, दूर कर, दूर कर, दूर कर, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूँ।